क्या हाल चाल है? ठीक हो? एक तो यहाँ अपन खाने पीने नहीं आए, चटोरापन करने अभी कई दुकानें लग गई बाहर, चाय की, समोसों की, उनकी जो भी लगी। खान पान बाजारू होगा, जैसा तैसा होगा, तो ध्यान भजन में बरकत नहीं आएगी। तो बाजारू चीजों से जरा ज्यादा खाने से अपने को बचाना। दूसरी बात यह है कि भगवान के ज्ञान को, भगवान के आनंद को, भगवान के माधुर्य को पाने के लिए ही हमारा मनुष्य जीवन है और शिविर में राजमार्ग मिले। तीसरी बात मैं अभी वहां बोला कि जो हमारा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, उस मकानों की, उन मुर्दों की याद आती है, ये मर गया, वो मर गया, जिसकी हड्डियां भी नहीं, लेकिन जो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मौत भी जिसको मार नहीं सकती, उस आत्मा परमात्मा की याद करनी पड़ती। रुपए पैसों की और संसार की याद तो आती और भगवान की याद करनी पड़ती है। ये कितना बड़ा भयंकर खतरनाक आश्चर्य है, भगवान की याद करनी पड़ती है, नश्वर चीजों की याद आती है, जो छूट जाने वाला है उसकी याद करनी पड़ती है, जो छूट गया उनकी याद आती है, जो छूट रहा है उसकी याद आती है, जो छूट जाएगा उसकी याद आएगी, लेकिन जो अछूट है उस परमात्मा की याद करनी पड़ती है। हरिओम हरिओम सीताराम सीताराम ओ भगवते वासुदेवाय।
हे ललुआ हो, जरा वो उसको बोलना मैं भी आ रहा हूँ माला करके।
भगवान की याद में
ललुआ कलुआ की याद आई था, चाय वाले की याद आती है, दूध वाले की याद आती है, चिकुड़े की याद आती है, छकले मकले की याद आती है। वो भगवान की याद करते तो दूसरों की याद घुस जाती है, लेकिन दूसरों की याद में रखा क्या है? लल्ला ललिया बिटिया, दूसरों की याद दूसरे गर्भों में घुमाएगी, दूसरे तनों में घुमाएगी, दूसरे कर्मों में घुमाएगी। तो स्व की याद कर। स्व की याद करने के लिए एक सुंदर तरीका है परमात्मा के याद, कि वो जो कभी नहीं मरता और मेरा साथ नहीं छोड़ता, जो मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा, मैं उसी का हूं, वो मेरा है बस। और कितना भी संभाले लेकिन रहेगा नहीं, वो अभी मैं नहीं हूं। लो कितना भी दवाई खाओ, सौंठी पाक खाओ, मेथी पाक खाओ, जयंती का पद्मा पाक खाओ, कुछ भी खा लो, सालम पाक खाओ, फिर भी शरीर मरने वाला है। जो मरने वाला है वो मैं नहीं हूं, और मरने के बाद भी जो रहेगा वो मैं हूं, परलय के बाद भी जो रहेगा वो मेरा है, मरने के बाद भी जो रहेगा वो मैं हूं। तो मेरा और परमात्मा का तो सीधा संबंध है। दुख आएगा तो चला जाएगा, विघ्न बाधाएं हैं, लांछन लगते हैं, आते हैं तो जाते हैं, लेकिन वो मरने वाले पे आते हैं, मुझ पर नहीं आ सकते। संत कबीर पर कितने लांछन लगे, बुद्ध पर, महावीर पर, मीराबाई पर, सबरी बिलन पर। जिस पर लांछन लगते हैं वो शरीर है, और सब कुछ होने पर भी जिसका कुछ नहीं बदलता बिगड़ता, वो मेरा आत्मा है, परमात्मा वही मैं हूं। ओम आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप। छकला तकला की याद माला करते हो मेल मुआ। पहले के जमाने में बैलगाड़ियां जोत के ले जाते शहर में सामान लेने को, तो पड़ोसियों को बोलते कि भाई किसी को कुछ मंगाना है तो बोल दो, तो कोई गुड़ लिखवाता, तेल चावल आटा दाल। तो एक किसान के यहाँ उसके बेटे की शादी थी, उसने बैलगाड़ी तो जोत ली, और गांव वालों को जरा आवाज मार दिया कि भाई मैं जाता हूँ, जरा किसी को कुछ मंगाना है तो बोलो। तो किसी ने कुछ मंगाया, किसी ने कुछ, तो उनका याद करते करते बाजार में से वो सब खरीद के गाड़ी भर दी और गांव में आके भाई आ जाओ जिसका जो है ले जाओ, तो लोग ले गए। ओ परिवार वालों ने पूछा कि बेटे की शादी का सामान, ओ बोलता ओ मारू दीकरू आ तो भूल ही गयो। अरे मेरे बेटे तो मैं तो भूल ही गया। तब पत्नी ने कहा कि अरे मेल मुआ घर नु भूली ने गाम नु ताणी ला ले। घर नु भूली ने गाम नु ताणी ला ले। बेटे की तो शादी थी, घर का जो चिट्ठा था वो तो सामान कुछ नहीं लाया और गांव का खींच के लाया। ऐसे जो घर में है हाजरा हजूर है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, विघ्न बाधाओं की ऐसी तैसी करने वाला है, लांछनों के सिर पर पैर रखने का बल आनंद देने वाला है, ऐसे परमेश्वर की याद भूल के इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा ये हो गया, ऐसा हो गया। अरे जो हवाई बातें है, जो हवाई तीर है, वो अपने में काय को गुजरता है तो अपना आनंद छलका यार। मेल मुआ के घर नु भूले गाम नु ताणी लायो क्या। अररर गाम सुर गाम थे छोकरा लगन थोड़ी ना लगा। अरे लगन था से तो सू और हो जाएगा, लगन तो क्या हो जाएगा और बच्चे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर सब मौत के तरफ जा रहे। वो अमरता का अनुभव करने के लिए जो जीवन मिला है उसको जान लेना। और उसका सुंदर उपाय है कि जो कभी नहीं मरता वो मेरा है, मैं उसका हूं। वो आनंद स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मैं काय को मन की कल्पनाओं में शरीर की उलझनों में उलझू। अरे ओम 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 जो होगा देखा जाएगा। अपना पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, तत्परता से लगो, लेकिन चिंता और चिंतन मरने वाले का काय को करो। चिंता और चिंतन मरने वाले का क्यों कर। घर नु भूले इन गाम नु लावानी शू जरूर। बात समझ में आ गई, समझ गए। इतना सत्संग भी मिल गया ना, तो हजार तीर्थ तो हो ही गए तुम्हारे, लाख तीर्थ का फल। समर्थ रामदास ने कहा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तो कोटि तीर्थ फल जैसा। कबीर जी बोलते तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। तो ये सत्संग अभी का ये सत्संग का अंत होगा क्या? शरीर का अंत होगा, लेकिन इस बात का अंत नहीं हो सकता कि जो कभी नहीं मरता वो मैं हूं और जो सदा नहीं रहता है वो ये है मेरा है। जिसको मेरा मान बैठे वो भ्रमणा है, लेकिन जहां से मैं उठता है वो आप। कितना भी संभालो जो मर जाएगा वो मैं अभी ही नहीं हूं। चलो अभी से मैं मान लेता हूं कि वो नहीं हूं मैं, जो मर जाएगा वो मैं नहीं हूं, और मरने के बाद भी जो रहने वाला है मैं अभी वही हूं। ये मानने में क्या जोर पड़ता है, क्या तकलीफ है। कितना भी सूठी पाक खाओ के पछी मेथी पाक खाओ, सालम पाक खाओ के खजूर पाक खाओ, हीरा पैरो मोती पैरो पैरो नव लखा हार, तो पण एक दिन मरण के रिया। तो जो मर जाने वाला है कितना भी संभालो ये मरेगा सॉरी, तो जो मर जाने वाला है वो मैं नहीं हूं, ये मानने में क्या जोर पड़े। और मरने के बाद भी जो रहता है वो ही मैं हूं। अरे आओ माँ, चिंता आती और चली जाती फिर भी जो रहता है वो मैं हूं, बीमारी आती और चली जाती फिर भी जो रहता है वो मैं हूं, ये मानने में क्या तकलीफ पड़ती है, क्या धोखा है, क्या जोर पड़े। हे मान के अपना आप हर परिस्थिति के बाप बन जाओ ना, काहे को डरते। किसी का बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा मानना नहीं, और सबकी गहराई में अपने परमेश्वर की स्मृति, और वो पहले अपना आत्मा है यही, इतना सरल है। उसको पाने में काहे को कंजूसी करते हो, उस परमात्मा सुख को पाने में क्यों कंजूसी करना। परमात्मा ज्ञान को पाने में, परमात्मा आनंद को पाने में, परमात्मा रस को पाने में काय को कंजूसी करना। जो छूट जाएगा वो पाप आके क्या झक मार लेंगे, अगले जन्म का क्या रहा। जैसे बचपन नहीं रहा, बचपन के खिलौने नहीं रहे, ऐसे ये भी जीवन शरीर नहीं रहेगा, उसके मकान दुकान खिलौने नहीं रहेंगे। जो नहीं रहेगा उसके पीछे चिंता करके क्यों मर रहे। और जो सदा है, अभी भी आनंद स्वरूप है, और जिसके सुमरण मात्र से विपदाओं से मुक्ति होती, हरि स्मृति मोक्षा विपत्तियों से मोक्ष कर देती। और अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान अपनी उनकी स्मृति मात्र से प्रसन्न होते हृदय में। माँ होती ना, माँ पेट में बच्चे को धारण करती, बहुत पीड़ा होती है बेचारी। अपन लोग तो अनुमान से बोलते हैं, दाढ़ी वाले लोग, वो तो जो माँ बननी होगी वो ही जाने बेचारी कितनी पीड़ा होती होगी। और प्रसूति के समय तो वह बहुत पीड़ा होती है, सामने सुना है, हमारा अनुभव नहीं है और भगवान नहीं कराएगा हमको अनुभव, हमको करना भी नहीं है। प्रसूति की क्या पीड़ा होती है। एक बार कोई आ गया, मैं जब घर छोड़ के साधु बना था, एक दो साल बीता तो कोई आया कि महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत। मैं क्या, क्या है? बोले बुखार हो गया। मैं क्या, बुखार क्या होता है? बोले महाराज बुखार है, बुखार। मैं क्या, बुखार में भाई क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं बुखार क्या होता है। फिर मैं सोचा कि बुखार कैसे आता होगा, क्या होता होगा, कोई बुखार बुखार भेजो महाराज। फिर कहीं बुखार आया तो बुखार का तो अनुभव कर लिया, और फिर वो जहरी बुखार का भी अनुभव कर लिया, लेकिन प्रसूति में क्या पीड़ा होती है वो अनुभव करने का मेरा कोई इरादा ही नहीं। वो तो माइयों के जिम्मे है, जिसको मां बनने का रस लेना। तो मैं सुना है कि बहुत बहुत मां को, महिला को मां बनते समय उस समय बहुत पीड़ा होती है। अपन तो कल्पना ही करते सुनी हुई, लेकिन वो बच्चे का मुखड़ा देते ही देखते ही वो पीड़ा भूल जाती। और गाय भी अपने बछड़े का बछड़ी का मुखड़ा देखते ही उसको चाटने लगती, उसको उसकी गंदगी में भी रस आ जाता है। और मां भी बच्चे को देखते ही कि सारी पीड़ा भूल जाती। फिर बच्चे के पालन पोषण में भी कभी कै कभी मैं कभी नाक बही कभी वो बहा कभी वो बहा, सब सहते सहते रातियां रोता है, जगा देता है। कभी माँ उब जाती है कि वो मुसीबत कर दी तूने, मैं तो मर गई। तो कोई आ जाए कि भाई ये तो मुसीबत है, जन्मते समय भी आफत है, अभी भी मुसीबत कर रहा है, तो काय को इसको मुसीबत को पालती है, ला मैं ले जाऊं तो इसको मार दूं या ले जाऊं, तो क्या माँ राजी हो जाएगी? अरे बोले नहीं नहीं, क्यों क्यों? अरे माँ ने इतनी आफत मोल ली, उसको पालती है, कष्ट सहती, फिर भी उसको उसके पालने का रस आता है, बच्चे को पोषने का देखने का आनंद है माँ को। अब बच्चे को देखने के आनंद में प्रसूति की पीड़ा कुर्बान, रात्रि जागने की मेहनत कुर्बान, अब बच्चे का शरीर देखने में इतनी पीड़ाएं सह लेते, तो परमात्मा को देखने में थोड़ी पीड़ा सह लेते तो कैसा मंगल हो जाए। बच्चे की तो प्रसूति की पीड़ा खतरनाक है, लेकिन भगवान के प्रागट्य में कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा दिखती नहीं। उस समय भी पीड़ा नहीं होती, बड़ा आनंद होता है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करो, बड़ा आनंद होता है। और बाद में भी कोई पीड़ाएं भेजे तो वहां अच्छू हो जाती। तो बच्चे को पालने का, बच्चे का इतना मुसीबत मोल लेके भी बच्चे को देखने का आनंद इतना मिलता है, तो जिसकी सत्ता से बच्चे का पालन हुआ, पोषण हुआ और बच्चा दिखता है, और जिसकी चेतना से बच्चे का शरीर है,
उस परमात्मा की स्मृति याद करनी पड़ती है। हाय राम
देखना जरा दूध न बिगड़ जाए
मेल मुआ के तो
ओए एको तो कुत्तों को
मिले ओ कुत्ते की मिले की यार दूध की यार आती
ओ झबुआरे ओ ललुआ ओ उनको जरा बुलाना मैं जरा भजन कर रहा हूँ भगवान का भजन कर भगवान का तो भजन करना पड़ता है भगवान की याद करनी पड़ती है और उनकी याद आती है ये कैसा आश्चर्य बिल्कुल नया सत्संग है पेटी पैक माल है कि नहीं है जाओ छुट्टी करो ओम ओम नारायण 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 खाओ पियो देर से रात को खाना ठीक नहीं है
ये पाठशाला है संसार एक पाठशाला है ईश्वर प्राप्ति का अगर कोई गलती नहीं होता तो आपका हमारा शरीर ही नहीं होता जन्म ही नहीं होता मुक्त हो जाते लेकिन गलती को गलती ना मानना ये विडंबना है और गलती क्या है बड़े में बड़ी गलती ये है कि जो हम पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे उस शरीर को हम मैं मानते जो पहले हमारा नहीं था बाद में नहीं रहेगा उन चीजों को हम अपना मानते और उन्हीं से सदा एक रस रहने की गलती करते उसके पीछे सारी गलतियां पोषित होती है। तो अब क्या करें कि ये शरीर एक दिन नहीं हो जाएगा ये वस्तु नहीं हो जाएगी तो अंतःकरण पूर्वक मान लो कि अभी भी ये शरीर और वस्तुएं मैं शरीर मैं नहीं हूं वस्तुएं मेरी नहीं लेकिन शरीर के बाद भी जो रहेगा मौत के बाद भी जो रहेगा जन्म के पहले भी जो था और जो दुख को भी जानता है सुख को भी जानता है बीमारी को भी जानता है तंदुरुस्ती को भी जानता है बचपन को भी जानता है बीत गया उस सब को जानता है वो सत स्वरूप चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा मेरा शाश्वत सत्य तो उस आत्मदेव का ध्यान करो आत्मदेव का स्मरण करो श्री कृष्ण जी ने गीता ध्यानेन आत्मनि पश्यति ध्यान के द्वारा उस आत्मदेव को देखो केचित आत्मना आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे उस ईश्वर तत्व को अपने आपे को पाने के लिए तीन तरीके बताए कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा तो कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। निष्काम भाव से जब सेवा करते तो आनंद आता है। पूछ देखो मेरे सेवक रसोइयों को पूछ देखो पैसा नहीं लेते हैं जो भी रसोई की सेवा करते हैं या परोसने की करते हैं झाड़ू बुहारी करते हैं सारे काम जो हो रहे हैं पैसे नहीं लेते अपनी इच्छा से आके रहते हैं सेवा करते हैं। तो कुछ लिए बिना सेवा क्यों करते अरे आनंद आता है रसोई को 500 रुपया रोज दो तो उसको उतना फायदा नहीं होता है जितना ही मेरे रसोई को लाभ होता है जयराम देखिए यहां सेवाधारी अपनी नौकरी छोड़कर कोई क्लास वन का है कोई क्लास तीन का है क्लास दो का है तो छुट्टियां रखकर यहां आकर जो शिविर में सेवा करते तो उनको जो सेवा से जो संतोष होता है आनंद होता है और संसार में भी जो उनका कई समाधान हो जाते हैं
वो रुपए पैसों से उतने नहीं होते, तो इसको बोलते कर्म योग। कर्म तो करे लेकिन भगवान से मेल करने के लिए कर्म करे, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करे। कई लोग कर्म करते सेवा भाव करते लेकिन दिखाने के लिए सेवा करते तो कर्म भोग हो जाता है, बदले के लिए करते तो कर्म भोग हो जाता है। लेकिन आप कर्म तो करो लेकिन कर्म को योग बना दो। सासू से उदारता का व्यवहार करो, बहू से उदारता का व्यवहार करो, पड़ोसियों से उदारता का व्यवहार करो, आपका कर्म योग में तर चल जाएगा। उसका क्या कर्तव्य है और वो मेरे लिए ऐसा करे, इधर नहीं देखो। हमारे से जो हो जाए उदारता भरा व्यवहार, आपको आनंद आएगा। एक ही तो एक स्टेप है। तो कर्म को योग बनाए, कुछ कर्म योग के द्वारा हम उस आत्मा के आनंद को पाते, कुछ ध्यान योग के द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म योगी भी ध्यान का सहयोग ले तो और मजबूत बनेगा, ध्यान योगी भी व्यवहार में कर्म में उदारता बरते सहयोग। और सांख्य योग तो ये इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये सब प्रकृति का है, परिवर्तित है। उस परिवर्तन को जानने वाला मैं कौन? श्वास अंदर आया सो, बाहर गया तो हम सो। इस प्रकार अपने आत्मदेव जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं। ये बात मानने में क्या तकलीफ पड़ती? तुम्हारी सत्ता के बिना हाथ उठेगा क्या? आंख ने ठीक देखा कि नहीं देखा उसको जो जानता है वो मैं हूं, ये मानने में क्या कोई धोखा है क्या? किसी भी धर्म का आदमी ये बात तो मान सकता है। मन ने सोच विचार किया और मन के सोच विचार कई आते हैं जाते हैं, उसको देखने वाला मैं हूं। और जिसको अमल में लाते हैं अथवा सच्चे मानते हैं तो वो दुख सुख देते हैं, लेकिन आते जाते हैं ध्यान नहीं देते तो उनकी कुदाल नहीं गलती। बोलो क्या ख्याल है? विचार आए और उनको सच्चा माना तो राग के विचार आए तो जाओ भोगो पाओ, द्वेष के विचार आए तो जाओ भिड़ो लड़ो। लेकिन भैया अगर सत्संग सुन रखा है तुमने तो तुमको ये भी पता चलेगा कि जीवन में आरोप प्रत्यारोप दुख या मुसीबत आए तो जिस किसी दुख और मुसीबत के सामने डंडा लेकर खड़े होने के लिए, आरोपों के सामने गधा लेकर भिड़ने की जरूरत नहीं होती। समय की धारा में उनको बहने दो, आप थोड़े अछूते रहो सो हम। तो कितनी मुसीबतों और मेहनतों से जूझने की अपेक्षा आपको ठीक सूझबूझ मिलेगी और वो बमंडल चला जाए। तो सांख्य योग जिसमें विचार की प्रधानता होती, ध्यान योग उसमें ध्यान की प्रधानता होती, कर्म योग उसमें कर्म की प्रधानता होती। लेकिन योग अपने आप से ही होता है परमात्मा स्वभाव। मैं तो ये प्रयत्न करता हूं कि मेरे जो भी सत्संगी हैं चाहे देश विदेशों में कहीं, उनका कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग चलते फिरते सभी समय में सजाग रहे। बस गुस्सा है ना तो देख लो ये गुस्सा आया है, अब इसको अमल में लाऊं कि गर्जना का रूप दे दो। वो भाई माला कर रहा था, ये ठीक नहीं करता। अगर गुस्से से मैं जलूं तो भी ठीक नहीं, और गुस्से से उसको डांटूं तो उसका भी आहित मेरा भी आहित। मैंने गर्जना कर दी है क्या रहता है अंदर में उसकी भलाई और बाहर से जरा फूफाड़ा मार दिया। ऐसे ही बच्चों को या परिवार में जब भी आपको जरा गुस्सा करना है तो एक गुस्से में जलना होता है और सामने वाले को सबक दुख देना होता है। दूसरा के बेचारे ने गलती की दोबारा गलती ना करे ऐसा सबक दो। बाहर कठोरा भीतर से कोमल, कि आप कर सकते व्यवहार में बोलो जयराम जी की काज हमार हित तासु हुई। हमारा सिद्धांत के अनुसार बेटा बेटी मित्र परिवार अथवा धर्म के अनुसार उनका अपना कार्य हो, भला उनका हो। मेरा भला उसलिए गुस्सा करना ये कत्ल के बल से काम कराना या कानून के बल से काम करना, लेकिन परस्पर भाव यंत्रों के बल से काम करना हो तो सामने वाले का भला मुख्य होता है। फिर आपको जैसा बनना हो समय बन सकते, पाप नहीं लगेगा। सत्य बोलना चाहिए, हितकर बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन माँ बच्चे को जब डांटती है तो कई बार हितकर होता है, सत्य नहीं होता और मधुर भी नहीं होता। दवा पी ले, हे बाबा पकड़ जा। वैसे ही बाबाओं की गिराकी मंदी करने वाले बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, भैया तुम तो कम से कम बच्चों पर रहमत करो, बाबा से हवा दिखाओगी तो फिर शराबियों की दोस्ती करेगा, बाबा पकड़ के ले जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये सब झूठी बातें बच्चे को बोलती है, दवा पी ले ऐसा कर हुआ है तो झूठ भी है और कठोर भी होता है। फिर भी माँ बच्चे का हित चाहती तो उसको ये करने में पाप नहीं लगता। कठोर भी है झूठ भी है, लेकिन हित की प्रधानता है। तो कर्म योग हित की प्रधानता से चलता है। ये राम जी है तो रावण के साथ भिड़ते हैं, कृष्ण जी है तो कंस के साथ भिड़ते हैं, अथवा पूतना का दूध तो क्या प्राण ही पी लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उनको ऐसा ही मिलता हूँ। तो पूतना आई थी प्राण लेने के लिए, तो कृष्ण ने प्राण ले लिए, लेकिन भला कर दिया, स्वधाम भेज दिया। जो प्रेम से भजते हैं भगवान उनके साथ प्रेम से पेश आते हैं। जो जिस भाव से भजते हैं वो परमात्मा सत्ता उस भाव से उसको मदद रूप होते। तो कर्म योग, अब कर्म योग में ध्यान योग का फायदा उठाओ। आप सुबह नींद में से उठते हो मैं चुप बैठ जाओ, अथवा जब साधन दिन में चुप बैठ जाओ 5 मिनट 7 मिनट, मन इधर उधर जाए उसको देखो तो जा। मैं तो जिससे शांति पाया उसी की तरंग लेकर तू भाग रहा है। तू मुर्दा है मुर्दा, सत्ता मुन चैतन्य की है। ओम शांति आनंद, ओम माधुर्य, आज प्रसन्न रहूंगा, हर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आओ आओ, परिस्थितियां आने जाने वाली है मैं रहने वाला हूं, दुख सुख आने जाने वाला है मैं रहने वाला हूं, मौत आने जाने वाली है मैं नित्य हूं, जो नित्य है वो मैं हूं, आत्मा हूं, सो हूं, आनंद ओम चैतन्य। गुरु गीता का कभी पाठ कर लिया करें, भगवान शिव को अथवा भगवान कृष्ण को, राम को या गुरुदेव को एक टक देखे, जब साधन में बैठे एक टक देखे तो उनकी अनुभूति के तरंग आपको मदद करें। आप पाएंगे कि प्रकाश आ रहा है, उनके विचार हमारे अंतःकरण को एकाकार कर रहे हैं। क्योंकि जो तत्ववेता महापुरुष होते हैं, या श्री राम है या शिव जी है, वो उतनी आकृति में या उतने देश में नहीं होते, अनंत ब्रह्मांडों में फैले हुए होते। तो श्री राम को मानने वाले, कृष्ण जी को मानने वाले और किसी को मानने वाले ये सोचें कि आप आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, शिव स्वरूप, मंगल मूर्ति से एकाकार, फिर विचार आएगा, मन इधर उधर जाएगा। ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ओम ओम ओम। सुख स्वरूपाय नमः, सुख स्वरूपाय नमः, ज्ञान स्वरूपाय नमः, आनंद रूपाय नमः। ओम नारायण राम हरि गोविंद माधव अच्युत केशव। ओम हरि ओम। मन की भाग दौड़ पुरानी है तो फिर आप भी उसके लगाम लो।
हरिओ
इस प्रकार का अभ्यास बना दो। न किंचित अपि चिंतित, कोई भी चिंतन होता है तो उसको महत्व न दो। इसको बोलते मनोराज, महत्व दिखाए तो फिर उस मनोराज को तोड़ने के लिए सुंदर उपाय है ओमकार का जप। ओमकार का जप और नित्य ध्यासन अंतरंग साधन है मनोराज का। मन भागता रहेगा, पुरानी आदत है। मन न भागे इसलिए भिड़ो मत, मन भागता है उससे जोड़ो मत, उसको महत्व न दो। बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आप उनको सत्य सत्य न मानो ये तो पानी के तरंग किनारे होके चला जाता है। पानी नित्य है, तरंग अनित्य है। ऐसे भाव विचार अनित्य है और मेरा परमात्मा चैतन्य अंतर्यामी देवता नित्य है। ओम हरि ओम। ओम 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 अपना ब्रह्मानंद छलकेगा। ओम ओम आनंद ओम गुरु जी ओम। मैं हमारे गुरुदेव को याद कर लेते थे तो गुरुदेव का सत्संग और गुरुदेव का भाव और गुरुदेव का तरंग है। अपने अपने गुरु को है ओम 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 तो संकेत करते, फिर हम मन ही मन बातें करते। इधर उधर की बातें आए मनोराज आए तो फिर गुरु से वार्तालाप चालू कर लेते थे। तो गुरु से वार्तालाप तो ज्ञान में ही हो जाता था, हमारा तो काम बन जाता था। फिर कभी शास्त्र पढ़ते हो अच्छा आनंद आनंद आता तो चुप बैठते, फिर मन इधर उधर जाए। तो ऐसे कई उतार चढ़ावों से अगर उद्देश्य है ये पाना है तो बस, सूरत पहुंचने का उद्देश्य था तो क्या, उतार आए तो क्या वहां रुक गए क्या, या चढ़ाई आई तो क्या गाड़ी रुक गई क्या, लांगते आए लांगते आए, चरे बेटी चरे बेटी। उद्देश्य बना लो को हमें तो ब्रह्मानंद पाना है, ऐसा सुख पाना है कि जो मौत का बाप भी न छीन सके, ऐसा ज्ञान पाना है कि जिसके आगे इंद्र का खजाना भी नन्हा लगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, सुख के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं, फिर सुख के दाता बन जाओगे। बाहर का रट रटा कर डॉक्टर बनते हैं वकील बनते हैं, आखिर फिर भी दुख तो नहीं मिटाने बेटे हैं लाला। रटो रटाओ लेकिन थोड़ा समय उसके लिए निकालो जो स्वतः ज्ञान का स्रोत है। अरे उपाय उपचार की प्रेरणा मिल जाती। सूददास व्यक्तियों ने ऐसी ऐसी दवाइयां ऐसा ऐसा उपचार बताया कि बड़े बड़े डॉक्टर बीमार डॉक्टर ठीक हो जाते। प्रज्ञानम ब्रह्म्य, वो प्रज्ञान घन परमात्मा ब्रह्म है, सब जगह ठोस भरपूर है, सबके अंतःकरण में कीड़ी कितनी छोटी है, ज्ञान स्वरूप उसमें भी भरपूर है। टेबल पर मिठाई रखी कीड़ियां ना पड़ जाए, थाली में पानी भर के कटोरी उल्टी करके उस पर मिठाई रख दी दूसरी थाली में। अब कीड़ी महारानी ने इधर उधर देखा होगा कि हाँ तो मौत है, नहीं जा सकते पानी, तो फिर क्या करा, दीवाल पे चढ़ी। किसने सिखाया था, कौन सा कोर्स किया था उन्होंने, दीवाल पे चढ़ी और वो टंगा था रस्सी या वायर वायर बराबर उसके सिद्ध में आकर प्लेट में उतरी। बिल्कुल ये देखी हुई घटना है। अखंडानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने अपने सत्संग में लिखा कि मैंने देखा है, हमारे घर में मिठाई थी, हमने लेटे लेटे देखते रहे दो तीन घंटे ये कहां से आती क्या सब। और फिर दूसरी जगह भी देखा कि वो कहीं से जंतु घसीट के लाए, लेकिन उनका बिल तो छोटा था, जंतु जावे नहीं, इधर उधर खींचा, फिर क्या करा कि कुछ एक पक्ष में हो गई दूसरी दूसरी तरफ और बराबर जंतु को और कुछ बीच में काटने लग गए, दो पीस कर दिए, फिर भी जावे नहीं, फिर चार टुकड़े कर दिए, एकदम टुकड़े टुकड़े करके अपने बिल में ले गई। ये प्रज्ञानम करण परमात्म चेतना का इसी व्यापक ज्ञान स्वरूप। कहीं कोर्स करने गई थी क्या कीड़ी, लेकिन उनका ज्ञान पेट भरने तक का है, शारीरिक समस्याओं के समाधान करने तक का ही है। और आप भी विज्ञान पढ़कर शारीरिक समस्याओं का समाधान किया तो आप जिस चोले में है और कीड़ी जिस चोले में, अपन लोग बराबरी के ही है। उसने भी बच्चे पैदे किए और बच्चों को सुरक्षित रखा और प्रॉब्लम आया तो उसने भी सॉल्व किया और अपन भी सॉल्व किए, लेकिन शरीर के अंतर्गत ही तो किया। और शरीर मरने वाला है तो मरने वाले के पीछे मरे गए कि और कुछ किया बहादुरी। अज्ञानेन आवितम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। अज्ञान से उनका चिदघन जहां से ज्ञान का भंडार है उस ढक गया और मोहित हो गए। मोहित हो गए जो है नहीं, जो रहेगा नहीं, उसको थामने में। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मोही मूल है। तो मोह कैसे मरे, निर्ममो निर अहंकारा सम दुख सुख क्षमी, निर्ममो जा दे में ममता छू, निर अहंकार हो जा, वस्तुओं का अहंकार न कर, मैं इतना पड़ा मेरा इतना है। अरे एक पानी की बूंद से तो यात्रा हुई थी और मुट्ठी भर राख में तो यात्रा पूरी हो जाएगी, मैं किस बात की करता बेटे, असली मैं को खोज, ये नकली मैं तेरी, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं बड़ा हूं, मैं फलाना, अपने में विशेषता का आरोपण मत कर लाला। जो भी तुझे दिख रहा है जैसा तेरे शरीर में हड्डी मांस है ऐसा सब, तेरे अंदर मन बुद्धि है, तेरे अंदर जो भी है विज्ञान आनंद घन वही सब है। तेरी बुद्धि में और तेरे अहम में ये भर गया है कि मैं ये जानता हूं, लेकिन इस विषय के और भी जानकार है। और आखिर जान जानकर सब जिससे जाना गया उसको जाने बिना मर जाते, फिर जन्मते, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। हिरण का चिंतन करते गए तो राजा भरत जैसे सज्जन आदमी हिरण हो गए, राजा नृग जैसे आदमी अजगर हो गए, वो क्रिकेट हो गए, राजा अजगर हो गए। इतने बुद्धिमान होने के बाद भी नीची योनियों में जाना पड़ा और योनियां नहीं मिली तो मां के गर्भ से पतन हुआ। तो आपने मनुष्य जीवन का फायदा उठाने में गलत ना असावधानी बरती। तो श्री कृष्ण कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यति, ध्यान के द्वारा उस आत्मदेव को देखो और देखते देखते देखने वाला उसमें विलय हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई आकृति दिखेगी आप देख रहे और भगवान दिखेगा। तरंग को बोले कि तुम पानी को देखो तो क्या होगा, नमक की पुतली को कहे कि तुम समुद्र को देखने जाओ, ऐसी निसंकल्प दशा हो जाए। इससे मन बुद्धि में बड़ा भारी विलक्षण ज्ञान व्यवहार कुशलता सब आ जाएगी। ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचित आत्मना महात्मना, अपने आप से आत्मा को जानते। अन्य सांख्य न योगे न कर्म योगे न चापरे, गीता का 13वां अध्याय का 24वां श्लोक है। कई मनुष्य ध्यान के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सेवा करते करते आनंद आता है, सच्चिदानंद घन का आनंद है। उदारता से जो आनंद आता है सच्चिदानंद घन का परमात्मा का है। कुछ नहीं करते और बड़ा शांति और आनंद आ रहा है तो परमात्मा देव का है। अभी तुम्हारे घर की कोई सुविधा तुम्हारे पास नहीं है और यहां इतने सारे लोगों के लिए घर जैसी सुविधा संभव ही नहीं है, तो सारी सुविधाओं के बिना भी अभी आप घर से ज्यादा सुखी नहीं है तो आप यहां रह नहीं सकते, भाग जाएंगे, क्योंकि सुख तो मांग है आपकी। तो इससे पता चल गया कि सुविधाओं के बिना भी सुख स्वरूप दिल के झरोखों में झुरमुट 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 है। अगर ये सुख की तरंग सुख की धारा भले आप अनजाने में नहीं मिलती तो आप बैठ नहीं सकते। किसी डिंकर को स्मोकर को ले आओ, उठेगा, हाँ कुछ समय रहे और उसका तामसी और राजसी प्रभाव कम हो तन से और बुद्धि से, सात्विकता आएगी तो फिर वो तरंगों का प्रवचनों का फायदा मिलेगा और डिंकर भी भगत बन जाएगा। तो मति 6 प्रकार की होती, अभी 3 प्रकार की मति का थोड़ा सा सात्विक मति तक अपन प्रवेश किए। भगवत प्रसाद जा मति, भगवत ये मति तत्व मस हो गया काम। 3 में तो घूम ही रहे हैं, 4थी 5वीं और 6थी, 4थी तक आए तो जीवन में चमत्कार होने लगते। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो बहुत कम मार्क आते थे और स्कूल वालों ने कहा कि अब इनका नाम निकाल देंगे और सारस्वती मंत्र लिया और अभी 30 लाख रुपए की नौकरी, किसी को 8 लाख की नौकरी, किसी को फलाने, मैंने में इतने कमाता। अभी कोई जिसने कभी मनुष्य को बोलते नहीं देखा हो उस आदमी को ले आए और उसको जीभ दिखा दे तो क्या वो बोल समझेगा कि इतना इतना बोल सकती है? इतना इतना बोल सकती है, इतना इतने पुस्तक और कैसेटे भर जाए इतना ही ये बोल सकती है, यंत्र लगा के देख ले सारे तो बता सकता है क्या? इसके द्वारा इतनी कैसेटे, इतना साहित्य, इतनी मैगजीने, तो भाई सब तुम्हारे बहिकरण से नहीं होता, अंतःकरण से भी कोता है और अंतःकरण को सत्ता देने वाले से तो सारी सृष्टियां चल रही है। वो तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है, मैं उसकी साधना सिखाने ले जा रहा हूं। ओंकार मंत्र गायत्री छंदा परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता, सामवेद में लिखा है कि अगर नीच कर्मों का त्याग करके संध्या उपासना आदि सत्कर्म करता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करे और 1 वर्ष तक इस मंत्र का अनुष्ठान करे तो परमात्मा प्रकाशते, संन्यास उपनिषद में लिखा है। भैया मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, मैंने 1 वर्ष का नहीं किया, मैं खाली 40 दिन का अनुष्ठान किया था और 36वें दिन तो ऐसा ऐसा मेरे को अनुभव हुए और ऐसा ऐसा मिला कि मैं अभी तक बांटते बांटते उस खजाने से देखता हूं कि तनिक भी कम नहीं हुआ है। ध्यान योग शिविर में जरा सा उस खजाने की किरण बांट देता हूं, लोग हा 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 होने लगता, क्या क्या होने लगता। शिविर इसीलिए लगाता हूं कि को खजाने से थोड़ी एक किरण फेंक दो, फिर देखो क्या होता। इस शिविर में भी करूंगा, देखते रहो। 40 साल हो गए, अभी एक भाई 100 में से एक रुपया नहीं, एक पैसा तो घटना चाहिए, नहीं घटा। ऐसा खजाना जो मेरे को मिला है वो तुम्हारे पास भी मौजूद है, इसीलिए मैं इतनी मत्थापच्ची कर रहा हूँ, इतनी समितियां, इतने आश्रम, इतने, ताकि तुम लोगों को भी कुछ, भाई पूरा न मिले तो कुछ तो लेते जाओ, और कुछ कुछ लिया है तभी तो दौड़े दौड़े आते हो कुछ मिला है तभी तो आते हो। नारायण हरि, नारायण हरि, इतना ज्ञान और सत्संग मिल गया, लेकिन उस आत्मदेव को जानो, उस आत्मदेव में जगो, जो इतना आया गया फिर भी कभी नहीं जाता। केचित आत्मना आत्मना पश्यति, अपने आप में सद्भाव से, गुरु के संकेत मात्र से, श्रद्धा भक्ति से भी उस रस स्वरूप का रस ले लेते, नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानियों की नजरों में आ जाते। नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्ष, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, अपना आपा उस परमेश्वर में मिला दिया। सबका जो अंतरात्मा बनकर बैठा है वो शिव जी का भी है, मेरा भी है, तो एकाकारता हो गई। संसारी विकार में तो खिन्नता आती है, कलह होता है, घटता जाता है। जवानी में जो पति पत्नी का आपस में लगाव होता है, शादी के दिनों में वो फिर नहीं रहता होगा, जो भी चीज वस्तु में रहता है, लेकिन प्रेम में तो नित्य बढ़ता रहता है। और प्रेम में कभी कभी वक्रता भी होती, तो हमने वक्रता हमारे गुरु जी से कही, तो गुरु जी 10 महीने तो लोक कल्याण के लिए विचरण करते, 2 महीने एकांत, हाँ, नैनीताल के जंगल में रहते, तो हम वहां जाते। तो गुरु जी ने पढ़ाया, वो हमको ग्रंथ देते, हम पढ़ते जाते, गुरु जी सुनते हो थोड़ा, कभी व्याख्या करते। तो यही एक दिन बोला, ये पढ़ो, तो पढ़ा, तो उसमें आया ब्रह्मज्ञानी का दर्शन, वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगतरा दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, का ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तो मैं तो ये बात, तो फिर मेरे को सूझी, मैंने कहा सही, तो बोले क्या, मैं क्या हूं, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी के दर्शन हुए होंगे कि नहीं हुएंगे, नहीं तो मैं बता दूं उनको। अरे चेक प्रेम में कभी भगवान के साथ, गुरु के साथ मानसिकता से ऐसी छेड़ कर जैसे तालाब में पत्थर डालते पानी उछलता, ऐसे ही कभी प्रेम और भक्ति में ऐसी छेड़खानी भी चलती। नित्य नवीन रस देता वो परमात्मा, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अपना आपा है, वासुदेव सर्वनिधि ओम आनंद। ये कोई रास्ता ऐसा नहीं कि करके बैठ गए क्या होता है, देखे क्या बने, ऐसा नहीं है। ये तो हंसते खेलते नानक सतगुरु भेटिया, दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां, हंसते खाते खेलते पहनते मुक्ति का अनुभव करा दे। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच हो ये मुक्त। गोरखनाथ जी ने अपनी भाषा में कहा, हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, अहर्निश कथी वो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। जो भी कुछ है उसको देखो, लोभ आया तो देखो, काम आया तो देखो, क्रोध आया तो देखो, चिंता ही तो देखो, देखत देखत ऐसा देखो कि मिट जाए धोखा, रह जाए एको 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 एको, बस एको देव गुड़ा केशु सर्वभूतेषु नहीं ना नास्ति किंचित। उसे एक परमेश्वर के नाते सभी से मंगल भरा व्यवहार, राम राम राम, जो रोम रोम में रम रहे हैं।